नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधा नायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने साझा भविष्य के लिए साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि अगले वर्ष मार्च के अंत तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। तेलंगाना में 86 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। केंद्र ने आपदा सहायता के रूप में बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को 1,280 करोड़ रुपए मंजूर किए। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 10 अप्रैल से कार्डों का वितरण शुरू होगा। भारत की ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 में रजत पदक जीता। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराधा नायके के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। दोनों नेताओं की बातचीत में भारत तथा श्रीलंका के बीच निकटतम द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित रही। दोनों नेताओं ने साझा भविष्य के लिए मजबूत भागीदारी के संयुक्त दृष्टिकोण पर प्रतिबद्धता जताई। श्री मोदी को कोलंबो के राष्ट्रपति ने मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। दोनों नेताओं ने सामपुर बिजली परियोजना के शिलान्यास समारोह में ऑनलाइन भागीदारी की। ये परियोजना NTPC और सिलोन बिजली बोर्ड संयुक्त रूप से पूरी करेंगे।
सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौते से श्रीलंका के लिए बिजली एक्सपोर्ट करने के विकल्प खुलेंगे।
भारत दाम्बुला में तापमान नियंत्रित कृषि गोदाम स्थापित करने में मदद करेगा। इसके अलावा वो 5,000 धार्मिक संस्थानों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने में भी मदद करेगा। इससे श्रीलंका में 25 मेगावाट बिजली की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम कोलंबो में भारतीय शांति रक्षक बल स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। श्री मोदी ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत श्रीलंका पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर अभियान पर जोर देता है।
पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिशा नायक की भारत यात्रा के बाद से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा।
श्री मोदी ने मछुआरों के मुद्दे के समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा। मछुआरों की तथा जब्त नौकाओं की वापसी में तेजी लाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में श्रीलंका की तमिल राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिले। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त श्रीलंका के भीतर तमिल समुदाय के लिए समानता, गरिमा और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। और अब बात करते हैं हमारे कोलंबो संवाददाता अहमद मुईन फारूकी से। डॉक्टर फारूकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है?
लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। इस यात्रा के दौरान रक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं जिनका श्रीलंका की जनता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से श्रीलंका द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करना यह दर्शाता है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को न केवल महत्व देता है बल्कि कि उन्हें और मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
अजय फारूकी, प्रधानमंत्री का कल अनुराधापुरा जाने का भी कार्यक्रम है, इस दौरान क्या कुछ विशेष होने की संभावना है?
लवलीन कल प्रधानमंत्री मोदी अनुराधापुरा में जय श्री महाबोधि मंदिर का दौरा करेंगे, जहां वो 2200 साल पुराने उस पवित्र वृक्ष के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे, जिसकी एक शाखा बोधगया के मूल बोधि वृक्ष से संगमित्ता तेरी द्वारा लाकर लगाई गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भारत के सहयोग से विकसित दो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जो उत्तरी प्रांत और राजधानी कोलंबो के बीच सुरक्षित और निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेंगे।
जी फारूखी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindu को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अगले चैत्र नवरात्र तक छत्तीसगढ़ से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा।
मैं आज सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूँ, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं।
छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला और शिल्प को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए आयोजित किए गए बस्तर पंडुम की सराहना करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष बस्तर पंडुम में देश के हर आदिवासी जिले के कलाकार शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की संस्कृति, यहाँ की बोली, गीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और व्यंजन छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत की संस्कृति का गहना है। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से बस्तर पंडुम के तहत 12 श्रेणियों की स्पर्धाएं होंगी और जिसमें देश के हर जनजाति जिले के कलाकार शामिल होंगे। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने और बस्तर की संस्कृति से दुनिया को परिचित कराने के लिए विभिन्न देशों के को बस्तर के विभिन्न जिलों का भ्रमण कराया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल हुए। इस बीच तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले में 20 महिलाओं सहित 86 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में शांति और सामान्य जनजीवन के लिए इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि राज्य पुलिस के ऑपरेशन चुए यूथा सहायता कार्यक्रम में के अंतर्गत ये आत्मसमर्पण माओवादियों के पुनर्वास का हिस्सा है। उन्हें तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रूपये प्रदान किए गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के अल्लूरी राजू जिले में माओवादियों के 11 लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विकास और कल्याणकारी पहलों के कारण माओवादी पार्टी का प्रभाव कम हो रहा है। रेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में आधुनिक पंबन पुल का उद्घाटन देश के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री कल इस पुल का उद्घाटन करेंगे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह समुद्र के पानी में निर्मित पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है। श्री वैष्णव तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
युवा शक्ति महाशक्ति और आज एक मैरीटाइम नेशन होने के नाते हम लोगों ने महसूस की है हमें अलग अलग वर्टिकल पे कितना काम करनी है। अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली मैरीटाइम नेशन के हिसाब से अपना पहचान बनाना है तो निश्चित रूप से आज की युवा को विशेष भूमिका पालन करना होगा।
श्री सोनोवाल ने कहा कि कई सदियों के शानदार इतिहास के साथ भारत का समुद्री क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कर्नाटक में कारवाड़ नौसेना अड्डे पर हिंद महासागर में सागर अभियान के अंतर्गत INS सुनैना को हरी झंडी दिखाई। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग किया जाता है। आज राष्ट्रीय नौवहन दिवस और सागर अभियान की 10वीं वर्षगांठ है। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि सागर अभियान भारत की नौवहन क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सरकार ने पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को अतिरिक्त 1,280 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मंजूर की है। गृह मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि सरकार ने आपदाओं के बाद इन राज्यों में तत्काल मंत्रालय स्तर की केंद्रीय टीमों को भेजा था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वर्ष 2024-25 में 28 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 20,264 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए हैं और 19 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 5,160 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित रहीं।
आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवार के लोगों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इस अवसर पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 6,50,000 से अधिक पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 36,00,000 अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है।
ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत पहले जो 2014 में 62% उसका पैसा हेल्थ पर खर्च होता था, आज वो घट करके 38 पर आकर के खड़ा हो गया, 38% पर आकर।
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के निवासी देश भर में अब 30,000 से ज्यादा सूचीबद्ध अस्पतालों में इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने घोषणा की कि इस महीने की 10 तारीख से आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण शुरू हो जाएगा।
आज केंद्र की ओर से 5,00,000 रुपए तक का इलाज दिल्ली के जिन 6,54,000 परिवारों को मिल पाएगा, उसमें दिल्ली सरकार की ओर से और 5,00,000 जोड़ करके कुल मिलाकर के 10,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य जीवन बीमा हम दिल्ली की जनता को देने वाले हैं।
आयुष्मान भारत योजना जो वर्ष 2018 को शुरू की गई थी, इसने सिर्फ 5 वर्षों में देश भर के गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है, जिससे उन्हें चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान भारी स्वास्थ्य व्यय का बोझ नहीं उठाना पड़ा है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की सिफेत कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। ईशा सिंह ने अब से कुछ देर पहले 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। चैन सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक जीता। IPL T20 क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने राहुल के 77 रन की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन ही बना सकी। एक अन्य मैच में चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने साझा भविष्य के लिए साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया, अगले वर्ष मार्च के अंत तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। तेलंगाना में 86 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। केंद्र ने आपदा सहायता के रूप में बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को 1,280 करोड़ रुपए मंजूर किए। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 10 अप्रैल से कार्डों का वितरण शुरू होगा। ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।